ಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಯಮುನಾ ತೀರ राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलरे सुभद्रा जय जय जगन्नाथ गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं ग्रंथ श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय तीन श्लोक संख्या 13 अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्।
अष्टमे मेरुदेव्यां तु
अष्टमे मेरुदेव्यां तु
नाभिर्जातौरुक्रम
नाभिर्जातौरुक्रम
दर्शयन् वर्त्मधीराणाम्
दर्शयन् वर्त्मधीराणाम्
सर्वाश्रम नमस्कृतम्
सर्वाश्रम नमस्कृतम्। शंकराचार्य
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम् सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातौरुक्रम दर्शयन् वर्त्मधीराणाम्
वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार आठ वर्गों में विभाजित है। चार वृत्तिपरक तथा चार सांस्कृतिक उत्थान से संबंध विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये चार वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं संन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पद पर सांस्कृतिक उत्थान के चार सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्ध अवस्था के लिए चार अवस्थाएं हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र राजा ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्र को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का आदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई कथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक करने में पटु है, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक अवस्थाओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदा। सुत गोस्वामी यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और उन 24 अवतारों का वर्णन करते करते सुत गोस्वामी आज आठवां अवतार भगवान का जो है उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि अष्टमे मेरु देव्याम तु, आठवां अवतार जो हुआ वो मेरु देवी के गर्भ से, और नाभिर जात उरुक्रम, और नाभि राजा के घर पे उरुक्रम के रूप में प्रकट, और दर्शयन वर्त्म धीराणाम, दर्शयन मतलब दिखाया और वर्त्म मतलब रास्ता, उन्होंने रास्ता का मार्गदर्शन किया, और किसके लिए, धीराणाम धीर व्यक्तियों के लिए, है ना। तो वृषभ देव ने धीर पुरुषों के लिए मार्गदर्शन दिया, है ना। और जो वृषभ देव है उन्होंने जिस मार्ग का प्रदर्शन किया, वो मार्ग जो है वो सर्वाश्रम नमस्कृतम, वो सभी आश्रमों के द्वारा प्रणम्य है है ना, सभी आश्रम उनको प्रणाम करते हैं। उसने जो मार्ग दिखाया और उस मार्ग पे जो चलता है, वो मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति को हर आश्रम वाले क्या करेंगे, आदर देंगे, है ना। तो ये श्लोक का अर्थ है। आप जानते हैं भगवान का एक नाम है उरुक्रम, उरुक्रम क्या होता है, उरुक्रम का अर्थ नहीं, उरु का अर्थ होता है बड़ा, बहुत विशाल, और क्रम का अर्थ होता है स्टेप, चलने में हम लोग जो स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप, बहुत बड़े बड़े कदम जिन्होंने किए थे उसका क्या नाम है। वैसे भगवान वामन देव को उरुक्रम कहा जाता है, किंतु भगवान का ही अवतार वृषभ देव होने के नाते वृषभ देव को भी यहाँ पर उरुक्रम कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान वृषभ देव को उरुक्रम कहा गया है। और वृषभ देव के विषय में आप जानते हैं कौन है वो, किनके वंश में हुए ये वृषभ देव, शंकराचार्य सूर्य वंश में हुए, तो चंद्र वंश में हुए। वृषभ देव किस वंश में, चंद्र वंश, क्योंकि इसके ही पुत्र, वृषभ देव के पुत्र हुए भारत, भरत महाराज, है ना, और जिसके नाम से आगे चल के इस भूमंडल का नाम पड़ा भारतवर्ष, है ना। तो वृषभ देव के पुत्र भरत महाराज के नाम से ही क्या नाम पड़ा, भारत, है ना। और वही भरत फिर आगे जाके क्या बनेंगे, जड़ भरत, वृषभ देव के पुत्र ही जड़ भरत हुए आगे जाके। तो ये है वृषभ देव का संक्षिप्त इतिहास, है ना, ये उनका वर्णन, किनके पुत्र हैं, नाभि राजा हुए और उनके पुत्र हुए वृषभ देव। वृषभ देव के 100 पुत्र थे, कितने, 100 पुत्र थे, और 100 में से अधिकांश जो थे वो ब्राह्मणों को गुण को धारण करके प्रकट हुए। हालांकि वृषभ देव क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं, चंद्रवंश मतलब क्षत्रिय कुल, है ना, किंतु फिर भी उसमें से ज्यादातर जितने पुत्र हुए, 80 से अधिक पुत्र उनके, 88 पुत्र कैसे हुए, सब ब्राह्मणों को गुण धारण करने वाले, है ना। और 9 हुए नव योगेंद्र, और एक जो था वो था भरत महाराज, जो एक पुत्र हुआ जो खाली राज्य संभाल सके, बाकी सारे कैसे हो गए, ब्राह्मण हो गए कुछ, और कुछ लोग नव योगेंद्र। नव योगेंद्र भागवत में बहुत प्रसिद्ध है, नव योगेंद्र मतलब भगवान के उच्च कोटि के भक्त, है ना। नव योगेंद्र महाराज बड़ी बड़ी सभाओं में जाके क्या करते थे, विरक्तों को भी वो प्रवचन दिया करते थे, नव योगेंद्र। आगे नव योगेंद्र महाराज का भी इसमें उल्लेख है 11वें स्कंध में, नव योगेंद्र महाराज किस प्रकार से लोगों को उपदेश दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार भरत महाराज के बहुत सारे पुत्र, अर्थात 100 पुत्र हुए, उसमें से एक ने केवल राज्य संभाला, वो भी किस प्रकार संभाला आप जानते हैं, है ना, संभालने के लिए संभाला था, क्योंकि पिताजी का जो राज्य है उसको कौन संभालेगा करके कोई नहीं था, इसलिए भरत महाराज बड़े पुत्र थे और उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के उस परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये राज्य को संभाले थे, और उन्होंने भी कुछ वर्ष संभाले, उसके बाद वो भी भरत महाराज भी अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले गए थे, है ना। भरत महाराज वन में गए थे, फिर उधर जाके मृग के साथ असत्य, है ना। तो इस प्रकार भरत महाराज का भी संक्षिप्त चरित्र हमने सुना है पहले। तो वृषभ, वृषभ का क्या अर्थ होता है, बैल, वृषभ का क्या अर्थ होता है, लेकिन वृषभ का एक अर्थ और भी होता है। भगवान ने अर्जुन को कहा है, मालूम है भगवद गीता में क्या कहा है, भरत अर्षभ, सुना है आपने, भरत अर्षभ, भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया है भरत ऋषभ, मतलब भरत वंशियों में कौन, ऋषभ, भरत वंशियों में जो श्रेष्ठ है उसको भरत भरत ऋषभ कहते हैं। तो ये है भरत अर्षभ, अर्जुन का नाम है, है ना। तो ऋषभ का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और एक अर्थ होता है बैल, यहाँ पे बैल नहीं है, यहाँ पे क्या है, श्रेष्ठ है ना, भरत वंशियों में श्रेष्ठ। तो ऋषभदेव, ऋषभदेव मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति है ना, अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था अर्थात राजा थे। तो उन्होंने दर्शयन वर्त्म धीराणाम, धीर व्यक्तियों को उन्होंने क्या किया है, मार्गदर्शन दिया है। हमने सुना है, पता नहीं करीबन 6-7 साल हो गया ये सुन के भी, भागवतम में कुछ व्यक्ति को हुई धीर संबोधन दिया गया है, सबको नहीं दिया गया है ना। उसमें है युधिष्ठिर महाराज है ना, युधिष्ठिर महाराज धीर व्यक्ति है, और उसके बाद गोवर्धन जी को भी धीर कहा गया है ना। ऐसे 2 या 3 व्यक्ति है जिसको केवल धीर संबोधन, बाकी भगवान ने भी भगवद गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि धीर किसको कहा जाता है ना, फिर भगवान ने धीर कौन कहा जाता है उसकी व्याख्या किसके, कौन से अध्याय में, दूसरे अध्याय के कौन सा श्लोक, स्थित प्रदस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम, है ना, ये अर्जुन का प्रश्न था। और फिर भगवान ने इनकी व्याख्या की, ये धीर व्यक्तियों के लक्षण बताए गए हैं, है ना। भगवान ने अर्जुन को धीर व्यक्ति किसको कहा जाता है उसके लक्षण बताए, प्रजहाति यदा कामान सर्वार पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञश्च उच्यते। तो भगवान ने बहुत ही करीबन 15-17 श्लोक में उन्होंने धीर शब्द की व्याख्या दी है, मतलब स्थित धी व्यक्ति कौन है उसकी व्याख्या। और उपदेशामृत जहां प्रारंभ होता है वो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर, है ना। वहां भी इन वेगों को जो शमन करने की शक्ति रखता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, धीर व्यक्ति का है। तो धीर व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया, सर्वामपि शिष्याम, पूरी दुनिया को शिष्य बनाने की योग्य है ऐसा धीर व्यक्ति, किंतु ऐसे धीर व्यक्तियों को भी मार्गदर्शन कौन दिए थे, वृषभदेव, है ना। वृषभदेव अपने पुत्रों को, वृषभदेव के उपदेश भागवत ने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। श्रीमद् भागवतम का बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वृषभदेव के उपदेश 5वें स्कंद में है सुभद्रा महारानी। तो श्रीमद् भागवतम में वृषभ देव के उपदेश 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में दिए गए हैं, है ना। अपने 100 पुत्रों को जैसे ही वो अपना राज्य छोड़ के जाने वाले थे उन समय पे अपने पुत्रों को बैठा के सबसे पहले प्रवचन दिए अपने 100 पुत्रों को, है ना। और उन प्रवचन में आप सुनेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षाओं को प्रदान किए हैं जो आजकल के माता पिता अपने बेटे को नहीं देंगे, और देंगे तो बहुत डरेंगे, है ना। क्योंकि ऐसी शिक्षा अगर बेटा प्राप्त कर लेगा तो निश्चित है कि बेटा क्या करेगा, मंदिर में चला जाएगा तो अपने बेटों को जब ही उपदेश दिया तो फिर अपने एक बेटे ने अपना पिताजी का कर्तव्य समझ के उन राज्य को संभाले, है ना। बाकी सारे बेटे विरक्त हो गए, तो उनके उपदेश भी भागवतम में बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं, है ना। तो वृषभदेव, और उन्होंने वर्णन किया है कि दर्शयन वर्त्म धीराणाम, वैसे वृषभदेव ने जिस मार्ग का अवलंबन किया है उस मार्ग को सभी लोग नहीं अपनाते हैं। और खास करके हमारे वैष्णव संप्रदाय उनको नहीं ग्रहण करते, क्योंकि उनका जो मार्ग था वो बिल्कुल वैराग्य का था, और हमारा वैष्णव संप्रदाय कौन सा है, हाँ गौड़ीय है, लेकिन हमें केवल वैराग्य नहीं सिखाया जाता है, हम लोग में क्या सिखाया जाता है, युक्त वैराग्य, और उसी को दूसरी भाषा में अनुराग कहा जाता है, है ना। वैराग्य नहीं सिखाते, अनुराग सिखाते हैं, है ना। जैसे सारी वस्तुएं बेकार हैं, है ना, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इनसे जितने संबंध है वो सब बेकार है, उनसे हमारा कोई, तो उसको छोड़ के भाग जाना नहीं सिखाते, उसको क्या सिखाते, उसी को भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। और ये शरीर भी हमारा नश्वर है, आगे जाके नाश हो जाए, तो इसके प्रति ध्यान न देना, इसका अर्थ ये नहीं, तो इन शरीर से क्या करना है, हमको भगवान की सेवा करना है ना। और संसार के विषयों से जैसे व्यक्ति को वैराग्य सिखाते हैं ना, ज्ञान मार्गी लोग जो होते हैं वो संसार से वैराग्य सिखाते हैं, किंतु वैष्णव संप्रदाय में वैराग्य नहीं सिखाते, उसे क्या सिखाते हैं, अनुराग सिखाते हैं। अनुराग का क्या अर्थ होता है, और अधिक आसक्ति सिखाते हैं, है जी नहीं, कनेक्टिंग विद है ना। तो अनुराग का क्या अर्थ होता है, हमारी जो आसक्ति है उसको क्या करना है, चेंज करना है ना। हमारी जिस वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति है उनसे हटा के हमको कहाँ लगाना है हमारी आसक्तियों को, भगवान से या फिर भगवान से संबंधित वस्तु और व्यक्तियों के प्रति, है ना। जैसे कपिल भगवान ने कहा, हमारी जो आसक्ति संसार के प्रति है ना, अगर वही आसक्ति भगवान के प्रति या फिर भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए तो व्यक्ति अपने मोक्ष के द्वार खोल सकता है ना। महत सेवां द्वार माहो विमुक्ते, है ना, महत सेवा जो है वो मुक्ति के द्वार खोल सकता है, इस प्रकार से वर्णन किए हैं कपिल भगवान के उपदेश। ये जो है क्या है वो श्लोक, भगवान कपिल ने कहा है कि अगर हमारी आसक्ति जो है वो संसार के प्रति रही तो निश्चित है कि हम नरक में जाएंगे, और वही आसक्ति अगर भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए तो हम निश्चित है कि मुक्ति के द्वार खोल सकते हैं, है ना। तो आसक्ति को छोड़ना नहीं सिखाया जाता है, है ना। जैसे सुगंध लेने में किसी को बहुत ही रुचि होता है ना, तो क्या करेंगे उसको, भगवान को सुगंध अत्तर, हाँ फूल दिया जाएगा और उसको क्या करेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे, और भगवान को ऑफर करने के बाद यदि हम उस फूल को सूंघते हैं या फिर धारण करते हैं तो उसमें और अनुराग होना चाहिए, हमको क्यों नहीं मिला, है कि नहीं, तो उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। कई भक्त लोग होते हैं जो जिसको फूल माला पहनाया जाता है, तो एक मेरे गुरु भाई थे, वो उनको अगर फूल माला कोई गलती से पहना दिया तो वो 2-3 दिन तक पहने ही रहता, खाली नहाने जाएगा और शौच करने जाएगा तभी निकालेगा, बाहर आके वापस पहन लेगा। और उसी प्रकार भगवत प्रसाद, है ना, भगवान के प्रसाद में आ सकती, और उसी प्रकार भगवत कथा में, भगवत कीर्तन में आ सकती, है ना। हमको वैराग्य नहीं सिखाया जाता है, सुनने के प्रति वैराग्य ऐसा नहीं सिखा, और अनुराग सिखाया जाता, और सुनो और सुनो, लेकिन क्या सुनो, भगवत कथा और भगवत कीर्तन सुनो, है ना। सूंघने विषय में वैराग्य नहीं दिखाते हैं, है ना, सूंघने के विषय में भी और अच्छा सूंघो और अच्छा, अच्छा क्या है, भगवान को अर्पण करने के बाद इन सारे चीजों की भी महिमा है। जैसे कोई व्यक्ति ये फूल जो है ना, अगर उस फूल को भगवान को अर्पित करने के बाद अगर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उद्धव जी महाराज ने कहा है कि वो व्यक्ति भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है ना। ये फूल को कोई व्यक्ति धारण करता है, फिर भगवान के पहनाए गए वस्त्र को अगर कोई व्यक्ति खुद धारण करता है तो फिर वो व्यक्ति भगवान की माया के ऊपर क्या कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है ना। उच्छिष्टो भोजनम दास तव मायाम जये मही, भगवान का उच्छिष्ट और फिर भगवान को ऑफर किया हुआ फूल या फिर भगवान को अर्पित किया गया हुआ वस्त्र, है ना। कई भक्त लोग अभिषेक वस्त्र पहनते हैं ना, हाथ में गले में, है ना, तो भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है। तो केवल ज्ञान मार्गियों के जैसा वैराग्य नहीं सिखाया जाता है, है ना। वैष्णव संप्रदाय में क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, अनुराग सिखाया जाता है ना, किस प्रकार अधिक से अधिक हम उसके प्रति आसक्त हो, है ना। तो इस मार्ग का, ये वृषभ देव ने जो मार्ग बताया है उनका अवलंबन वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे वृषभ देव जो है अपने जीवन में जब भी उन्होंने वैराग्य ले लिया तभी घर बार छोड़ के निर्वस्त्र होके वन में जाके क्या करते थे, एक ही जगह पड़े रहते थे, वहीं पे अजगर वृत्ति से वो भोजन करते थे। अजगर वृत्ति जानते हैं ना, अजगर जैसे एक जगह पे बैठा रहता है और जैसे भोजन आता है उसको खाता है, आया तो खाया नहीं तो नहीं खाएंगे, है ना। इस प्रकार तो अजगर वृत्ति को धारण करके एक जगह पर रहते थे और वहीं पर रहते थे, वहां से ना आगे जाते थे ना, फिर उधर ही बैठे रहना और उधर ही खाना और उधर ही शौच आदि सारी क्रिया उधर ही करते थे। लेकिन वो केवल वही कर सकते, वो हम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, है? हम लोग उधर ही खाएंगे और उधर ही तब तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। कुछ लोग इसका अनुकरण करते हैं, है ना। आज कुछ संप्रदाय है, कुछ संस्थाएं हैं जो उनका अनुकरण करते हैं, जैसे जैन धर्म, है ना। ये लोग उनका क्या करते हैं, वो लोग अपने अपने दिगंबर कहते हैं वो लोग, है ना। तो 12 दिगंबर हुए हैं, 12 दिगंबर, और उनमें से प्रथम दिगंबर जो हुए थे वो वृषभदेव, है ना, वृषभदेव। तो वृषभदेव को अपने पहले मुक्त पुरुष माने जाते हैं, उसके भगवान या जो कहो, है ना, प्रथम दिगंबर। तो उनकी उपासना वो करते हैं और उसके बाद 11 हुए, उनका कहना ये है उनके बाद 11 हुए। तो प्रथम जो थे वो कौन थे, भगवान ऋषभदेव, है ना। और उन्होंने जिस मार्ग का अवलंबन किया था उनका अनुकरण ये लोग करते हैं, है ना। उनका क्या करते हैं लोग, अनुकरण करते हैं। वो जिस प्रकार रहते थे उस प्रकार रहते हैं। वो लोग का आप देखेंगे आश्रम आदि देखेंगे तो बहुत घटिया होता है, क्योंकि वो लोग वहीं पे खाते हैं और उसी के बाजू में क्या करते हैं, और कभी साफ सफाई इतना नहीं रखते हैं लोग, है ना। बहुत आप जाएंगे तो आपको तो उल्टी हो जाएगा, ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं। लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान वृषभदेव तो भगवान है, है ना। उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, उनके शरीर से जो मल आदि निकलता था वो भी सुगंधित हुआ करता था। सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है कि 1000 किलोमीटर तक तो उसका स्मेल, उसका सुगंध फैलता था, वातावरण को पवित्र करता था। अगर हम लोग उसका नकल करने जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। आजू बाजू से सब जो रहने वाले होंगे वो भी भाग जाएंगे, है ना। उनका अनुकरण हमारे लिए, प्रभुपाद महाराज ने भी लिखा है कि मूर्ख लोग होते हैं जो उनका अनुकरण करते हैं, है ना। उनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। अनुसरण मीन्स उन्होंने जो कहा है वो करना चाहिए हमको, है ना। उन्होंने वृषभदेव के उपदेश श्रीमद् भागवतम में दिए है, नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अरहत विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धते तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंतम। हमको ये मनुष्य जीवन ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात भगवत साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है ना, कुकर सुकर की तरह खा पी के भोग करने के लिए नहीं मिला। और नूनम प्रमत्ते कुरते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीति अर्पणोति न साधु मन्ने यत आत्मनो यम असन्नपि क्लेश आस देह। और इस प्रकार इंद्रियों से किस प्रकार व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त करके, इंद्रिय विषय वस्तुओं से किस प्रकार व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करके अपने मन को भगवान में स्थापित करे, स्थिर करे, इनका उपदेश ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को दिया, है ना। और अपने बेटे जब बैठे थे उसको बोला कि गुरु न सस्या, आप अपने जीवन में कभी गुरु मत बनना, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे अंदर न मोचये समुपेत मृत्युम, है ना, जब तक हम इन लोगों को, अपने आश्रित लोगों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक हमको इन पद को धारण नहीं करना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि गुरु नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम माता बनने के बाद, पिता बनने के बाद अगर अपने पुत्र को मुक्ति के अधिकारी नहीं बना देते तो फिर उसको माता या पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है, है ना। क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, मूर्खता कहा जाएगा, या फिर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए किए गए कार्य को ही माना जाएगा। क्योंकि भक्त पुत्र जो होता है उसको भक्त बना के मुक्ति का अधिकारी कम से कम व्यक्ति को बना देना चाहिए, तभी ही उसको माता या पिता बनने का अधिकार है। उसी प्रकार गुरु, गुरु बनने के बाद भी जब तक शिष्य को मुक्ति पद का अधिकारी नहीं बना देते तब तक हमको गुरु भी बनना, ये वृषभदेव के मतलब हमको इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि हम अपने बेटे को, हम अपने शिष्य को, या फिर हम अपनी पत्नी को, है ना। इसमें बहुत सारे कहे गए हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवम न सस्यात्, न पति न सस्यात्, है ना। और पति भी नहीं बनना चाहिए, पत्नी भी नहीं बनना चाहिए तब तक किसी का, है ना, जब तक हम अपने पति को सदमार्ग पे नहीं ले जा सकते। या फिर पति भी नहीं बनना चाहिए जब तक हम अपनी पत्नी को, इस प्रकार। तो न मोचये समुपेत मृत्युम, जब तक हम समर्थ नहीं हो जाते उनको मृत्यु से छुड़वाने के लिए, तब तक हम इन पद को धारण नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिए हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद महाराज ने चार प्रकार के सन्यासी, वैसे सन्यासियों के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं, सन्यासियों के कितने वैरायटी है पता है, 100 से भी ज्यादा सन्यासी का टाइप होता है ना। उसमें आप सुने होंगे पूरी, भारती आदि सुने कभी, ये तो मुख्य 10 है, उसके बाद भी 100 है, माधवेंद्र पुरी, केशव भारती, ये सब सुने, और त्रिडंडी तो हमने सुना है, त्रिडंडी है ना, त्रिडंडी है, और फिर कौन से हैं, एक तीर्थ होते हैं, तीर्थ भी एक सन्यासी का पदवी है ना। अब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सन्यासियों की ये उपाधि है तीर्थ, है ना, तीर्थाश्रम वनारण्य, आश्रम करके भी एक सन्यासी का पदवी है ना, आश्रम, फिर वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी, ये जो 10 है वो मुख्य है, ये 10 मुख्य सन्यासियों की पदवी है। और इसके बाद भी और कई सारी है ना, करीबन 108 है, 108 करीबन है, 108 से भी अधिक है ना, ये सन्यासियों का टाइप है। और भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में कहते हैं कि ये जो गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये जो है चारों के चारों किससे प्रकट हुए हैं, ये चार किन से प्रकट हुए हैं, स्वयं भगवान ने इनको प्रकट किया है ना। जिसमें भगवान कहते हैं गृहाश्रमो जधन्यतो, भगवान कहते हैं कि गृहाश्रम, गृहस्थ आश्रम जो है वो कहां से प्रकट हुआ, भगवान के इसको कमर का जो भाग कहा जाता है उसको, है ना। और ब्रह्मचर्य हृदय मम, और ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी आश्रम वो मेरा हृदय है। और वक्षस्थल स्थला ध्वने वास, वक्षस्थल ध्वने वास, वक्षस्थल है जो वानप्रस्थ जीवन है ना, वानप्रस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो भगवान कहते हैं मेरा वक्षस्थल। और संन्यास शिरसि स्थित, और संन्यास जो है वो मेरा क्या है, सिर है। तो इस प्रकार भगवान ने वर्णन किया है कि ये जो चार आश्रम है इनका भी स्वरूप इस प्रकार है, ये जो है सबसे पहले गृहस्थ जो है मेरे कमर से, और उसके बाद वानप्रस्थ जो है वो मेरा वक्षस्थल है, और ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो मेरा क्या है, हृदय है। भगवान ब्रह्मचारियों को कहाँ रखते हैं, और सन्यासियों को सिर पे बिठा के रखते हैं है ना, सन्यासी को हमेशा रिस्पेक्ट देना होता है, ब्रह्मचारी को नहीं देंगे तो ना, उसको भगवान हृदय में रखते हैं। तो इस प्रकार चार आश्रम, और त्रिदंडी सन्यासी हम, हमारे वैष्णव संप्रदाय में कैसे सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी, आप जानते हैं त्रिदंड का और एक दंड का क्या अर्थ होता है, त्रिदंडी सन्यासी, इस्कॉन में हमारे वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय में कौन से सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी, है ना, कौन सा, मनसा, वाचा और कर्मणा, एक श्लोक ही है, वाग्दंडो था मनोदंड, वाग्दंड और मनोदंड, काय दंडस तथैव च, और काय दंड काय मतलब ये शरीर, काय दंडस तथैव च यस्य ते निहिता बुद्धो त्रिदंडी स उच्यते, है ना। इसको त्रिदंडी कहा जाता है, किसको, जो वाक मन और काय इन तीनों को जो वश में रख सकता है, अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने शरीर को जो वश में रख सकता है उसको क्या कहा जाता है, त्रिदंडी, है ना। और भी कई सारे हैं, जैसे प्रभुपाद महाराज ने अपने तात्पर्य में लिखा है, सन्यासी के भी और भी चार टाइप होते हैं, सन्यासी में और चार, जिसको कुटीचंद, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। प्रभुपाद महाराज को क्या क्या पद दिया जाता था, परिव्रजकाचार्य। प्रभुपाद महाराज को क्या कहा जाता था, सन्यासी कौन होते हैं, परिव्रजकाचार्य। प्रभुपाद महाराज को परिव्रजकाचार्य। अब हम उसका जब बोलते हैं प्रणाम, ओ जय ध्वनि बोलते हैं, तभी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद श्री श्रीमद त्रिदंडी गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। तो त्रिदंडी, परमहंस और परिव्रजकाचार्य, है ना, ये तीन पदवी को धारण किए हुए थे प्रभुपाद महाराज, है ना। और उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, परिव्रजकाचार्य का क्या अर्थ होता है, जो कभी एक स्थान पर रुकते हैं, परिव्रजकाचार्य, है ना। और कौन सा है, परमहंस। परमहंस किसको कहा जाता है, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, है ना, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, या फिर जो तत्व को अर्थात भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उसको परमहंस कहा जाता है। और दूसरे दो है, उससे पहले वाले, दूसरे पहले वाले कौन है, एक है कुटीचक, है ना, जिसको कुटीचक। कुटीचक का क्या अर्थ होता है, जो अपने आश्रम में रह के सबको गाइडलाइन देते हैं, वो भी सन्यासी। सन्यासी हमेशा घूमता रहे ऐसा नहीं है, सन्यासी अपने आश्रम में रहता है, है ना, आश्रम में रह के सबको क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, तो उसको कुटीचक वृत्ति का सन्यासी कहा जाता है। और दूसरा है बहुदक। बहुदक का क्या अर्थ होता है, कर्म के प्रति उसकी जो दृष्टि है वो हीन होती है, कर्म के प्रति उतना रुचि नहीं लेते, और ज्ञान प्रधान होता है उसमें, क्या होता है, ज्ञान प्रधान होता है। तो ये चार प्रकार के सन्यासी में भी ये चार मुख्य, प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पे चार का वर्णन किया है। एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के, तीसरे स्कंध के 12वें अध्याय के 43 नंबर 43, है ना, इन श्लोक में इसका वर्णन हुआ है। तो चार प्रकार के सन्यासी और भी इसमें, परिव्रजकाचार्य, परमहंस, बहुदक और कुटीचक, ये चार प्रकार के सन्यासी का वर्णन प्रभुपाद महाराज ने किया है। और भी इसमें कई सारे हैं, जैसे इससे भी आगे सन्यासी किस किस प्रकार की वृत्ति धारण करते हैं। कुछ कुछ सन्यासी होते हैं जो अयाचक वृत्ति के होते हैं। अयाचक मीन्स क्या होता है, जो कभी किसी के पास जाके याचना नहीं करेंगे कि आप मुझे भिक्षाम दे, इसको अयाचक वृत्ति के संत कहते हैं, है ना। तो अयाचक वृत्ति मीन्स जो कभी किसी के पास जाके मांगेंगे नहीं। और दूसरी वृत्ति है अजगर वृत्ति, जैसे हमने अब कहा अजगर वृत्ति, मतलब वो कभी किसी के पास जाएंगे नहीं और न मांगेंगे, और अपने ही जगह पर बैठे रहेंगे, वहां पे जो भोजन आया उसको पाएंगे। तो ये हुए अजगर वृत्ति। और उसी प्रकार और भी दो वृत्ति है, जैसे जब ये किसान होता है, वो अपने खेत में से जब फसल निकालता है, तो उस समय पे जो अनाज होता है ना, जो अन्न होता है, वहां पे जाके सन्यासी क्या करते हैं, भिक्षाम देई, वहां जाकर मांगते, घर पे जाके नहीं मांगे, वहां जाके मांगे, तो उसमें से कुछ हिस्सा सन्यासी को दिया जाता है। तो एक वृत्ति ये भी है। और दूसरा एक कौन सी वृत्ति है, पक्षियों का वृत्ति। जिस प्रकार सारे अन्न जो होते वो खेत में से किसान अपने घर पे लेके चला जाएगा, खेत का भी पूरा कटिंग वटिंग हो जाएगा, तो उसमें कुछ जो अनाज के दाने पड़े रहते हैं, तो उस अनाज के दानों को चुन चुन के लेके जाएगा और उसको पका के खाएगा। तो ये भी एक वृत्ति है सन्यासी, है ना। तो इस प्रकार से भी जीवन व्यापन करते हैं। तो इस प्रकार कई सारी वृत्तियों से सन्यासी लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ वृत्ति कौन सी है, जानते हैं आप, ये बहुत सारी वृत्ति होती है इस प्रकार से, और भी है ना, सब लोग अपना अपना अनुष्ठान करके रहते हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो इस प्रकार से कई सारे सन्यासियों का वृत्ति होती है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ वृत्ति कौन सी है जानते हैं? कौन सी है? नहीं, क्यों अयाचक वृत्ति? अयाचक वृत्ति तो सबसे बेकार है हमारे लिए क्योंकि हमारे सन्यासी जो है वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी, वो अयाचक वृत्ति के नहीं होते हैं। वो तो कहीं भी जाके आप भगवान की सेवा क्यों नहीं करते, तो ये तो याचना हो गई। याचक मीन्स किसी भी चीज की और किसी भी कार्य के लिए याचना नहीं करेंगे आप, उसको याचक वृत्ति का, तो ये तो याचना हो गई। तो सर्वश्रेष्ठ वृत्ति किसको कही गई है? वो अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है वो। सबसे अच्छी वृत्ति कौन सी है? सबसे अच्छी वृत्ति है भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे मांगना भी पड़े तो मांगेंगे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर नहीं मांगना हो तो चुपचाप बैठ के माला भी करेंगे। ये वृत्ति सबसे अच्छी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करना पड़े उसको करने के लिए हम तैयार हैं। तब ऐसा नहीं कि मांगने में मेरे को तो शर्म आएगी, मेरे को तो बहुत शर्म आती है, वो वृत्ति बिल्कुल खराब है ना। अपनी शर्म को छुपाने के लिए तुम नहीं मांगते और आप अयाचक वृत्ति के बन जाते हो तो ये ठीक नहीं है ना। सबसे अच्छी वृत्ति है कौन सी? भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, है ना, ये वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है ना। अगर ये वृत्ति कोई व्यक्ति, उसको कौन सी वृत्ति, उसको क्या कहा जाएगा, भूल गया हूं मैं, उसको संस्कृत में कुछ शब्द है ना इस वृत्ति के लिए, तो वो वृत्ति को व्यक्ति को धारण करना चाहिए, है ना। और हमको भी, इवन हमको भी इसी भाव में रहना, भगवान के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, है ना, भगवान के लिए और भक्त के लिए जो करना पड़े, ये सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है। बाकी अयाचक वृत्ति के तो बहुत मिलते हैं, अयाचक नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगना कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई, नहीं मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मांगने में तो सब लोग, हम भी नहीं मांगते, नहीं मांगने में तो अनुकूलता है ना अपनी इज्जत बनी रहेगी, है ना। कई बार समाज में लोग चर्चा भी करते हैं ना, वो महाराज है वो कभी मांगते ही नहीं है, तो मांगते नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। नरसिंह मेहता कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भगवान के लिए मांगना भी पड़े तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। ऐसे समाज में एक कहावत है, गुजराती में कहावत है, मांगना और मरना दोनों एक होता है, मांगू ने मरवू भी दोनों एक है, मांगना और मरना दोनों एक है, लेकिन अगर भगवान के लिए मांगना पड़े तो उसमें मुझे शर्म नहीं आएगी, है ना। तो ये सबसे बड़ी वृत्ति है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए याचना करना, या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए चाहे हमको भ्रमण करना पड़े तो भ्रमण भी करेंगे, और एक जगह पे रहना हुआ तो एक जगह भी रहेंगे। भगवान की जिसमें प्रसन्नता है उस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये सबसे श्रेष्ठ वृत्ति मानी जाती है ना। तो इस प्रकार से कई सारे सन्यासियों को, हालांकि सन्यास आश्रम जो है वो सभी आश्रमों का लक्ष्य होना चाहिए, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास, सर्वश्रेष्ठ है सन्यास। और सभी व्यक्तियों का, ऐसे मैं पढ़ रहा था एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को विवाह करने के लिए और मदिरा पान करने के लिए, मांस भक्षण करने के लिए शास्त्रों में कहीं कहीं जगह पर चलो कर सकते हो, लेकिन कुछ समय के लिए, है ना, और उसका भी समय निश्चित किया गया है। उन समयों पे आप जैसे मदिरा पान और मांस भक्षण आदि क्रियाओं के लिए शास्त्र में कहीं कहीं पर छूट भी दी गई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना किया गया है, कहीं कहीं पर छूट दी गई, किंतु किस अवसर पर और कैसे व्यक्ति को, किस अवसर पर और कैसे व्यक्ति को छूट दी जाती है, उसमें कहा गया है कि जैसे क्षत्रिय वर्ग होते हैं या फिर शूद्र वर्ग होते हैं, वो कभी कभार अपने जीवन में शादी वादी होती है ना, कुछ उत्सव मनाते हैं, उन समय पे उनको मदिरा पान और मांस भक्षण के लिए छूट दी जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन अंतर्गत अगर आश्रम धर्म में देखा जाए तो गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के लिए भी इसी प्रकार कुछ समय के लिए छूट दी जाती है, लेकिन उसमें अंदर नहीं घुस जाना। उसके बाद क्या उसका लक्ष्य होना चाहिए? वानप्रस्थ के बाद तुरंत संन्यास, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। तो अल्टीमेट गोल क्या है? संन्यास आश्रम है ना, व्यक्ति का लक्ष्य। बेस्ट है कि फर्स्ट से डायरेक्ट लास्ट में चला जाए। अगर व्यक्ति समर्थ नहीं है तो फिर एक दो स्टेप और बढ़ा के फिर संन्यास। तो प्रभुपाद महाराज ने इसको इसमें बहुत ही अच्छे शब्दों में भी उन्होंने हर जगह व्यक्त किए हैं। सबसे पहले व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन में जाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन क्या होता है? 25 वर्ष तक व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन होता है। उसमें उस व्यक्ति को खूब अध्ययन और सेवा करनी होती है ना। आप देखेंगे ब्रह्मचारियों के कर्तव्य, जैसे विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों के विषय में पढ़ रहा था, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए और अपना मन जो है भगवान में लगा के और जिनके शरणागत गुरु के आश्रय में है उनको सुबह और शाम भिक्षा लाकर देना चाहिए, और अगर उनकी आज्ञा हो तो उसमें से कुछ प्रतिशत हमको ग्रहण करना चाहिए और उनकी नित्य सेवा में उपस्थित रहना चाहिए, है ना। उसमें वर्णन है किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो सेवा के विषय में भी कहा गया है कि हमेशा उसके समक्ष जब जाए तभी कैसे खड़े रहें, हाथ जोड़ के, और वो सोए उससे पहले हमको सोना, और उसको उठने से बाद हमको सोना, उसके उठने से पहले उठ जाना है, उसके सोने के बाद हमको सोना है, और सोते समय भी वो जब सोए अगर थके थके हो तो उनके चरण दबाए, है ना। इस प्रकार से इस कर्तव्य का वर्णन, और बने उतना अधिक तपस्या पूर्ण जीवन इसमें बिताना होता है व्यक्ति को, है ना। और खूब तपस्या पूर्ण जीवन और शास्त्र का अध्ययन और उसका चिंतन करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करते हुए व्यक्ति को इन 25 वर्षों को बिताना चाहिए, है ना। कम से कम 25 वर्ष अपने बेटे को न बितवा पाए तो कम से कम 2-4 साल के लिए छोड़ देना इधर, है कि नहीं। तो कम से कम सीख पाए, वेद शास्त्र वो पढ़ पाएंगे, नहीं तो वहां तो आप पढ़ाएंगे नहीं, है ना। तो ये हुआ विद्यार्थी जीवन, है ना। और उसके बाद है कौन सा? विद्यार्थी जीवन के बाद कौन सा है? गृहस्थ जीवन। आप जानते हैं विवाह, विवाह शब्द आप सुने हैं ना, ये कौन सा है? विवाह भी एक संस्कार है ना। विवाह का क्या अर्थ होता है आप जानते हैं? वि का अर्थ होता है विष्णु। वि का क्या अर्थ होता है? विष्णु। और वाह का क्या अर्थ होता है? वहन करना। वहन करना मतलब ढोना, है ना। तो भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा को अपने ऊपर लेना, उनकी सेवाओं को हमें जिम्मेदारियों को ग्रहण करना, भगवान विष्णु की सेवा की जिम्मेदारियों को ग्रहण करना, उसको विवाह कहा जाता है। समझ रहे? विवाह विष्णु का वहन करना। वहन मतलब वहन का अर्थ यह नहीं होता है, जैसे पत्नी का वहन करता है कौन? पति, है ना। पुत्र का वहन करता है पिता। वहन करना मतलब उसका पालन पोषण करना, है ना। तो विवाह का क्या अर्थ होता है? विष्णु का वहन करना, विष्णु का पालन पोषण करना, उनकी सेवा करना, उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य को करना, उसको विवाह कहा जाता है ना। तो गृहस्थ जीवन में जब विवाह करके जब गृहस्थ जीवन में जाता है तो उसका कर्तव्य है कि भगवान विष्णु की सेवा में अपना अधिक से अधिक समय बिता, अपने घर में नहीं, है ना। अपने घर में जो अधिक समय बिताता है उसको विवाह करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती, है ना। तो गृहस्थ जीवन। फिर है वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन क्या होता है? वानप्रस्थ जीवन क्या होता है? मधुर बाबा सो रहे हो क्या? तो वानप्रस्थ जीवन, है ना। वानप्रस्थ जीवन क्या होता है? 50 वर्ष तक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में रहने के लिए परमिशन, उसके बाद क्या करना होता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब घर से, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त, लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुआ जाता है, घर की जिम्मेदारियां पुत्र को हाथ में देकर और अपनी पत्नी को भी अपने बेटे के हाथ में देकर वहां से विदाई ली जाती है ना, क्योंकि हम और भक्ति में आगे बढ़ सके, और उसको क्या कहा जाता है? वानप्रस्थ जीवन। और वानप्रस्थ जीवन मतलब यह नहीं होता है कि उसको 75 साल तक वानप्रस्थ में ही रहना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। वानप्रस्थ जीवन के बाद अगर हम उसमें अभ्यासी हो जाते हैं, फिर घर की चिंता और ये सब सताता नहीं है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? संन्यास आश्रम में चले जाना चाहिए। ये है आश्रम व्यवस्था। और उसी प्रकार वर्ण अवस्था, वर्ण व्यवस्था हम सुने हैं। भगवान भगवद गीता के 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, है ना, क्या है वो? चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है ना। तो वृषभदेव भगवान ने इन सारे सन्यासियों को भी, है ना, क्या किए है? ये सन्यासियों क्या, ये वैरागी विरक्त लोगों को भी मार्गदर्शन दिए है। कौन? वृषभदेव। और वृषभदेव का राज्य भी बहुत सुंदर था। वृषभदेव की पत्नी कौन थी जानते हैं आप? वृषभदेव ने इंद्र की पुत्री जयंती, इंद्र की पुत्री का क्या नाम था? जयंती, उनसे विवाह किया और उनसे उनको 100 पुत्र हुए थे, है ना। और एक बार हुआ यूं, वृषभदेव के ऊपर उसका दिमाग खराब हो गया इंद्र का। उसने बोला आज मैं वर्षा उसके राज्य में करूंगा, भूमंडल के ऊपर वर्षा नहीं होगी। ये तो स्वयं भगवान है, इंद्र की वर्षा की राह थोड़ी देखेंगे वो। उन्होंने क्या किया, अपना सृष्टि करके अपने राज्य में बारिश, तो इंद्र भी सोच में पड़ गया। तो इस प्रकार वृषभदेव अपने राज्य में समर्थ है ना, स्वयं भगवान है और समर्थ भी है ना, तो वो इंद्र की वर्षा की और आदि की अपेक्षा नहीं करते। और इतना समर्थ राज्य, अभी इतना सुंदर, इतना शक्ति अगर होगा तो हम घर बार छोड़ के थोड़ी जाएंगे। इतनी सुंदर सुविधा फैसिलिटी होने के बाद व्यक्ति अपने, फिर भी वृषभदेव ने क्या किया, सब कुछ छोड़ के वन में चले गए। क्यों गए? क्योंकि हमको सिखाने के लिए, है ना। सर्वाश्रम नमस्कृत, सभी आश्रम के लोग और वर्ण के लोग उसको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। उनके लिए वो वंदनीय है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति छोड़ के कैसे जा सकता है? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी छोड़ के नहीं जा सकता है, तो जिसके पास इतना हो और छोड़ के चला जाए, है ना, तो स्वयं भगवान है, वैसे भगवान है। किंतु ऐसे कई सारे राजा महाराजाओं की भी हिस्ट्री हमको प्राप्त होती है कि जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ भगवत प्रसन्नता के लिए त्यागा हो, है ना। ठीक है, 9 बजे है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?